आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमफुमार्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रौ न परा। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ब्रजेश तनय श्री नंद नंदन आराध्य आराधनीय और साथ साथ तद्धाम वृंदावनम और वृंदावन धाम भी आराधनीय। वृंदावन धाम के प्रति की अपनी अपना प्रेम आकर्षण अपने जीवन का ध्येय लक्ष्य महाप्रभु ने बनाया था। महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम सिखाते हैं, साथ साथ वृंदावन प्रेम भी सिखाते हैं। दो भिन्न नहीं है, जैसे नाम और नामी भिन्न नहीं है, उसी प्रकार धाम और धामी भी भिन्न नहीं है। धाम के धामी वृंदावन के धाम, वृंदावन धाम के धामी है श्री कृष्ण। हर धाम के एक धामी होते हैं, तो धाम भी भगवत स्वरूप है, नाम भी भगवत स्वरूप है, कथा भी भगवत स्वरूप है, भगवान का प्रसाद भी भगवत स्वरूप है। इन सब भगवत स्वरूपों की आराधना सिखाए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आज हम सीखेंगे उनसे वृंदावन प्रेम, कई सारे अपने पार्षदों को, गोस्वामी गणों को चैतन्य महाप्रभु भेजे वृंदावन, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, रूप सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, वृंदावन जाओ वृंदावन, वहां से प्रारंभ हुआ उनका प्रेम, वृंदावन प्रेम। जब गया में थे तो हम लोग सुन चुके हैं, तभी वृंदावन मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। आकाशवाणी सुनी, नहीं नहीं अभी समय नहीं हुआ, उचित समय पर तुम जाओ वृंदावन। फिर रुके, अब संन्यास ग्रहण हुआ काटवा में, केशव भारती से संन्यास लिए, श्री कृष्ण चैतन्य बने। श्री कृष्ण चैतन्य की संन्यास ग्रहण करते ही पहला विचार, अब मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन तब भी नहीं जा पाए। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु बड़े युक्तिपूर्वक उनको रोके और शांतिपुर ले चले। वह सची माता के साथ भी मिलन हुआ कुछ दिनों तक। मां के आदेश अनुसार महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी अपना स्थान बनाया, हेडक्वार्टर्स। वृंदावन प्रस्थान करने की इच्छा तो सब समय जगी रहती ही थी। कई बार प्रस्ताव रखे महाप्रभु ने, लेकिन मैं नहीं चाहते थे कि महाप्रभु उनसे अलग हो। कई कारण बताए, महाप्रभु नहीं गए। दक्षिण भारत की यात्रा में गए, पुनः वैसे जगन्नाथपुरी लौटे। अब वृंदावन जाने की तैयारी, अनुमति भी भक्तों ने दी ही थी। महाप्रभु ने सोचा कि मैं पहले वृंदावन तो मुझे जाना ही है, तो प्रभु पहले नवद्वीप के भक्तों को मिलना चाह रहे थे, वहां से प्रस्थान होगा वृंदावन के लिए। तो मिलना जुलना हुआ और महाप्रभु के वृंदावन गमन की खबर, समाचार भक्तों को जब पता चला तो असंख्य भक्त महाप्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हुए। और उसी के साथ प्रभु ने वृंदावन जाने का विचार उस वक्त छोड़ दिया। वे अकेले जाना चाहते थे वृंदावन। पुनः प्रभु जगन्नाथपुरी लौटे और अब की बार अब जाएंगे ही वृंदावन। उड़ीसा होते हुए कटक, आगे झारखंड, वन की भी यात्रा, या वन के पशु और पंछियों को भी नचाए, प्रेम में मस्त कराए, आगे काशी, बनारस, इलाहाबाद को भेंट देते हुए महाप्रभु वृंदावन पहुंच जाते हैं। पहले पहुंचते हैं मथुरा। तबे सई विप्र प्रभु के भिक्षा कराइलो, मधुपुरी र लोक सब प्रभु के देखिते आइलो। कई ब्राह्मणों ने महाप्रभु के भिक्षा मतलब प्रसाद की व्यवस्था कर रहे थे। मधुपुरीर लोक प्रभु के देखीता देखीते आईल। मथुरापुरी के भक्त महाप्रभु को देखने के लिए आए। कितने लोग आए? लक्ष संख्ये लोक आई से नाहिक गणन, बाहिर हैया प्रभु दिल दर्शन। महाप्रभु के आने का पता चला और ये समाचार फैल गया। मथुरा नगरी में, मथुरा क्षेत्र में, तो जहां महाप्रभु का निवास था मथुरा में, तो वहां लक्ष संख्य लोग आई से, लाखों लाखों लोग आए, ना ही का गण कोई गिनती ही नहीं कर सकते, अनगिनत लोग वहां पहुंचे। तो लोग इतने उत्कंठा से दर्शन के लिए कब से एकत्रित हो रहे थे, उनका स्नेह, उनके स्नेह वश वश और प्रभु का भक्त वात्सल्य, बाहिर हैया प्रभु दिल दर्शन, तो प्रभु आए, बाहर आए, निवास स्थान से बाहर आए, और वह असंख्य भक्त उपस्थित थे, उत्कंठित थे, लालायित थे, तो उन्होंने दर्शन किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। वजानुलंबित भुजौ, अपनी लंबी भुजाए, वो भी बाहु तुले आसमान में उठाए, फिर कमलायताक्षम, और सब वर्णन है, गौरांग सुंदर, और पीतांबर, चैतन्य महाप्रभु पीतांबर वस्त्र, आज तो नहीं किए धारण, पीतांबर वस्त्र धारण करते, आप गेरुआ भी संन्यास लिए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण का सौंदर्य केवल कांति का रंग का ही अंतर है, बाकी तो वही व्यक्तित्व है। श्याम वर्ण के बजाय वो गौर वर्ण के है, अलकाशो भी कपोलन में, वो सब ऐसा दर्शन, और 7 feet tall कहते, 7 feet ऊंचे थे महाप्रभु, है कोई पुणे में 7 feet tall, और सदा के लिए प्रभु सुंदर रहते हैं। हम जब तक जवान हैं तो कुछ सौंदर्य सुंदरता है, लेकिन महाप्रभु हम बूढ़े हो गए तो फिर फिनिश हो गया, समाप्त। लेकिन महाप्रभु तो सदा के लिए जवान, अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, सदा के लिए किशोर, क्या 15 वर्ष 2 महीने और 7 दिवस, हाँ हमारे राधाकुंड प्रभु बताते हैं, हाँ कृष्ण की उम्र कितनी ऐसा कुछ, मैं कुछ याद है ना, 15 वर्ष 2 महीने और 7 दिवस, उससे ज्यादा उम्र उनकी बढ़ती ही नहीं है, उतने वर्ष उतने महीने उतने दिन के हो गए तो फिर हो गए, अभी उस वो किशोर अवस्था में रहेंगे सदा के लिए। तो बाल्य और फिर पौगंड और किशोर, फिर वही नवयौवनम च, इसलिए भगवान कभी दाढ़ी देखे आप कैसी होगी, 15 साल के बच्चे की कोई दाढ़ी होती है, मूंछ होती है। बाहुतुली प्रभु हरि बोल ध्वनि, प्रेमे मत्त नाचे लोक करी हरि ध्वनि। महाप्रभु ने दर्शन दिया तो कहा बाहुतुली बाहुतुली, और हाथ ऊपर किए शरणागत मुद्रा, और प्रभु कहे हरि बोल, प्रेमे मत तो नाचे। पहले थोड़े खड़े ही थे, बैठा तो कोई भी नहीं था। जब व्यक्ति उत्कंठित होता है तो बैठा भी है तो वह फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़े चलता फिरता है जब बड़ा ही उत्कंठित होता है, प्रतीक्षा करता है। तो महाप्रभु ने जब हरि बोल की ध्वनि की तो प्रेमे मत्त नाचे, मत्त मस्त होके लोग नाचने लगे और कहने लगे क्या, हरि वो हरि वो हरि वो। प्रभु जो हरि बोल हरि वो, महाप्रभु के हरि बोल कहने के साथ जब महाप्रभु अपने हाथ को यहां से ऐसे ऊपर उठाते हैं तो उस सारी एकत्रित भीड़ की जो भावना है, शरीर तो नाचते ही है कि साथ साथ उनकी भावना को ऊंचाई तक ऊंचा उठाते हैं, सभी को ऊपर उठाते हैं महाप्रभु। तो सभी हल्कापन महसूस करते हैं, फिर और नाचते हैं, कुछ बोझ कम होता है, चिंता का कहो और भी कई बातों का है बोझ है तो फिर बैठ जाते हैं, फिर हल्का सा फिर हम लोग फ्लोटिंग हवा में फिर तैरने लगते हैं, तो नाचते हैं। फिर भव बंधन कटते हैं नाचने से, ताली बजाने से। कई सारी पंछी बैठे हैं, पाप के पंछी जो बैठे हैं इस वृक्ष पर, ये शरीर भी एक वृक्ष है और पाप रूपी कई पंछी बैठे हैं। तो किसी पेड़ के नीचे जाओ जिस पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पंछी या चिड़िया बैठी है, तोता मैना बैठी है, वहां जाके आप क्या करो, एक फटाका या ताली बजाओ कुछ, तो क्या होगा, सारे पंछी उड़ जाएंगे। उसी प्रकार ताली बजाने से सब पंछी और हस्त की रेखा भी, फिर आप किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ताली नहीं बजाते कीर्तन में उनको दिखानी चाहिए, हाँ देखो भविष्य। जो ताली बजाते हैं उनका तो भविष्य निश्चित है, और क्या। आप सबकी देखा बदली हुई है, महाराज कह रहे हैं। ये कीर्तन नर्तन और करताल ध्वनि, इसके कितने सारे लाभ है, बड़ा महात्म्य है, महत्व है। तो महाप्रभु के हरि बोल दर्शन कर रहे हैं और उनके मुखारविंद से निकले हुए वे वचन हरी बोल, तो सभी हरी बोल भी बोल रहे हैं और मस्त होके नाच रहे हैं। जमुनार चबिष घटे प्रभु कैल स्नान, सई विप्र प्रभु के देखाय तीर्थ स्थान। तो महाप्रभु विश्राम घाट जाते हैं, जमुना के घाट, मतलब घाट मतलब कोई नदी है तो घाट है, ऐसे ही घाट कई कई भी घाट नहीं होता है, खंडाड़ा घाट वो घाट अलग है, खंडाड़ा लोनावड़ा घाट या घाट मतलब नदी का घाट। तो वह 24 घाट है, इनके नाम भी यहां लिखे हैं 24 घाट। तो मध्य में है विश्राम घाट और फिर उत्तर दिशा में 12 घाट है और दक्षिण में 12 या 11 है, कुल मिला के विश्राम घाट मिला के 24 घाट। तो वहां के स्थानिक एक ब्राह्मण महाप्रभु के गाइड बने थे, वे ही मथुरा से वो ले गए विश्राम घाट, और भी स्थान दिखाएंगे। स्वयंभू विश्राम दीर्घ विष्णु भूतेश्वर महाविद्या गोकर्णादि देखिला विस्तर। ये अलग अलग तीर्थ स्थान तीर्थस्थलिया है मथुरा मंडल की, मथुरा की, तो उनको दिखाए ये स्थानिक पंडित मार्गदर्शक। वन देखी बारे यदि प्रभु रमन होइला, से तो ब्राह्मणे प्रभु संगे ते लैला। जब विश्राम घाट पर स्नान किए और मथुरा के कुछ स्थान देखे, भूतेश्वर इत्यादि गोकर्ण आदि, तो महाप्रभु के मन में इच्छा जगी कि वृंदावन की ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करने की इच्छा हुई। सही थे ब्राह्मण प्रभु संगे थे लैला, और वही ब्राह्मण ने कहा मैं ले जा सकता हूं, आपको दिखाऊंगा सारा ब्रजमंडल की परिक्रमा कराता हूं मैं आपकी, और परिक्रमा प्रारंभ हुई ब्रजमंडल परिक्रमा की। मधुवन तालवन कुमुद बहुला वन गेला, तहा तहा स्नान करी प्रेमाविष्ट हैला। तो महाप्रभु कुछ ही बनों के यहां नाम लिखे हैं, वैसे वृंदावन में तो असंख्य बन है, कोई मोटे कोई छोटे, या बन के अंदर बन के अंदर बन है, लेकिन मोटे मोटे तो 12 बन कहे हैं। जहां सब लीला कैला श्री नंदन नंदन, द्वादश कानन 12 कानन वन, जहां नंदन नंदन ने अपनी लीला की। तो यहां तो लिखे हैं मधुबन तालवन कुमुद वन बहुला वन फिर वृंदावन काम वन खादीर वन, ये 7 वन हुए जमुना के एक तट पर। दूसरे तट पर फिर भद्र वन है, भांडीर वन है, बेल वन है, लोह वन है और महावन है, ये 7 और 5-12 वन महाप्रभु यात्रा प्रारंभ किए। पथे गाभी घटक तरे प्रभु रे देखिया प्रभु के बेड़य आसी हुंकार करिया। तो मार्ग में महाप्रभु ने कई सारी गायें देखी। गाभी घोटो ग्रुप्स ऑफ काउज, और ये बताना आपको भूल ही गए। वैसे आज हम लोग चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। हर प्रातःकाल में चैतन्य भागवत हम लोग पढ़ रहे थे। ये है चैतन्य चरितामृत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये रचना है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किए अंग्रेजी में, और उनके शिष्य चैतन्य भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। कुछ अनुवाद प्रकाशित भी हुए हैं। प्रभु रे बेड़य आई से हुंकार करिया। तो गाय कई सारी गाय, एक दो चार नहीं, दस बीस नहीं, हजारों हजारों गाय वहां। महाप्रभु को जब देखा इन गायों ने, तो गाय भागे दौड़ी आई और महाप्रभु के सभी दिशाओं में वो खड़ी हुई और क्या कर रही है, हुंकार करिया। गाय का हुंकार कैसे होता है, कैसे होता है? कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है। गाभी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमेर तरंगे, वात्सल्य गाभी प्रभु र चाटे सब अंगे। तो सभी गायों के मध्य में प्रभु स्तब्ध हो गए। जैसे स्तंभ होता है स्तब्ध, तो वैसे खड़े हैं महाप्रभु। और प्रेम के तरंग में मानो डूब रहे हैं। सभी गायें उनसे स्नेह करती है। गायों का प्रभु के प्रभु से वात्सल्य का संबंध है। अब जैसे गौर सुंदर वृंदावन आए हैं और यात्रा कर रहे हैं, प्रभु तो आए हैं एक भक्त के रूप में तीर्थ यात्रा करने, वृंदावन की यात्रा करने। स्नान करेंगे कुंडों में, वहां की धूली उठाएंगे अपने मस्तक पर, वहां के लीला का श्रवण करेंगे। उनका तो भक्त का भाव है, लेकिन ये जो ब्रज जो है, ब्रजमंडल है, वहां की गाय है या वृक्ष है या पंछी है या कई सारे मनुष्य है, उनकी समझ है कि ओ श्याम सुंदर आ गए। जब गौर सुंदर आए तो उन्होंने वैसा ही स्वागत सत्कार किया। उनका व्यवहार उनके साथ श्याम सुंदर, गौर सुंदर के साथ वैसा ही हो रहा था मानो श्याम सुंदर पधारे हैं। रिवो हरे कृष्णा तो गाय क्या कर रही है, स्नेह व्यक्त कर रही। गाय स्नेह व्यक्त कैसी करती है, चाटने लगती है। और सभी गाय चाटना चाहती है। जैसे बछड़े को वात्सल्य प्रेम, तो मानो उनका बछड़ा ही है, अपना पुत्र है पुत्री है, ऐसे वो महाप्रभु के प्रति अपना वात्सल्य प्रकट कर रही है गाय। सुस्त हैया प्रभु करे अंग कंडुयान, प्रभु संगे चले नहीं छड़े धेनुगान। तो महाप्रभु गाय चाटना चाह रही चाट रही है, तो महाप्रभु भी उन्होंने क्या उनका गाय का कंडुयन कहा कि सिंह के पीछे, गाय को कितना अच्छा लगता है जब सिंह के पीछे या कई यहां भी गाय फिर हिलती भी नहीं है, आंखें बंद करके स्वीकार करती है एक खोजलहाट या। तो गाय चाट रही है और महाप्रभु वो गाय की सेवा उस प्रकार से कर रहे, लेकिन फिर हर गाय चाहती है मी टू मी मैं भी हाँ। तो महाप्रभु सब गाय को खुजला रहे हैं और सब गाय चाट रही है। या तो हो सकता है महाप्रभु उतने ही बने जितनी वहां गाय थी, जो संभव है, ये तो डेली अफेयर है भगवान के लिए, तो ये तो संभव है। या भगवान सहस्र बाहु हजारों हाथ और अजानु लंबी, तो वैसे भी लंबी भुजाएं हैं, उनको और भी लंबा कर सकते थे, कर सकते हैं। जब वो असुर घोड़ा बन के आया, कौन था वो, केसी, तो भगवान ने अपना हाथ उस घोड़े के मुंह में डाल दिया। घोड़ा इतना विशाल था तो वो बादल को स्पर्श कर रहा था घोड़ा, वो जब अपनी पूंछ हिलाता तो वो बादल हिल जाते थे वहां आकाश के, इतना ऊंचा घोड़ा। फिर पैर भी मोटे, सब मोटा, और मुख भी कितना लंबा चौड़ा होगा ऐसे घोड़े का, हाँ इतना नहीं होगा, और आधा मील तो उसका मुख ही होगा। तो महाप्रभु ने श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना छोटा सा हाथ जो होगा कुछ 4-5 इंच लंबा यहां से यहां तक, या वो हाथ डाल दिए घोड़े के मुख में। उसे हुआ क्या, घोड़े के सारा मुख में वो हाथ लंबा होके फैल गया, जिसके कारण घोड़े को सांस लेना तक कठिन हुआ, गला बंद हुआ, रुंध हुआ, और उसी के साथ उस घोड़े की केसी का दमन हुआ, केसी का वध हुआ केसी घाट पर। तो इसे कहने का तात्पर्य ये है कि लगता तो था सभी को बाहर तो छोटे ही कृष्ण थे, लेकिन अंदर जब हाथ डाल दिए तो हाथ आधा मिल हाथ उनका फैल गया, तो लंबाई और मोटाई भी जितना मुख था अंदर, मुख का जो, तो सारा भर गया, भर दिया अपने हाथ से, सारा भर दिया घोड़े का मुख, उस केसी का मुख। तो ऐसे प्रभु के लिए फिर जितनी सारी गायें थी उनको स्पर्श करना कोई कठिन नहीं है, जो गाय पीछे भी है उनको भी स्पर्श कर रहे हैं, और वो भी गाय चाट रही है हाथ को, अंग को। प्रभु संगे चले नाही छाड़े धेनुगान। तो प्रभु जब आगे प्रस्थान अभी कर रहे हैं, सारा दिवस तो कुछ गायों के साथ ही नहीं बिताना, यात्रा भी तो है, तो प्रभु आगे बढ़े तो गाय उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, गाय भी पीछे पीछे जा रही है। कष्टे सृष्टे धेनु सब राखी लगोयाल, प्रभु कंठ ध्वनि सुनी आई से मृगी पाल। तो गाय पीछे से आई रही थी, तो इतने में महाप्रभु की ध्वनि सुन के कई सारे मृग और मृगी वहां पहुंचे, हिरण वहां पहुंच गए। मृग मृगी मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नहीं करे संगे जाय वाटे वाटे। वाट मतलब वही मराठी वाला वाट, वाट रास्ता मार्ग। तो गाय अभी चाट रही थी, अब कौन चाट रहा है? हिरण चाट रहे हैं, महाप्रभु के अंग को चाट रहे हैं। तो हिरण तो मनुष्य को जब देखते हैं तो क्या करते हैं? भागते हैं। कुछ क्षणों के लिए देखते हैं, जब कंफर्म हो गए कि मनुष्य है, कंफर्म हुआ तो फिर दौड़ने लगते हैं, दूर दौड़ते हैं, मनुष्यों की ओर नहीं आते, मनुष्य से दूर जाते हैं। तो उनके लिए तो ये मनुष्य तो मनुष्य नहीं है। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, वो मूढ़ अद्वैत और निराकारवादी तो समझते होंगे ये मनुष्य है। मानुषिम तनुमाश्रिताम, मनुष्य की तनु धारण किए है, ऐसे कई अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख समझते होंगे। लेकिन यहां के मृग और मृगी उनको पूरा साक्षात्कार है। और मनुष्य भिन्न होते हैं, ये मनुष्य नहीं, आकार तो कुछ मनुष्य जैसा हो दिखाई देता है। मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड, ऐसा बाइबल भी कहता है। मैन इज मेड, मैन को बनाया भगवान ने, मैन को मनुष्य को बनाया कैसे? इन इमेज ऑफ गॉड, गॉड की इमेज है, पहले ये भी स्वीकार हो रहा। गॉड का कोई रूप है, इमेज है, उसके अनुसार भगवान ने मनुष्य को बनाया। तो इमेज दिखाई तो बाहर से एक जैसी, हाथ है, नाक है, मुख है, पैर है, लेकिन अंतर तो जमीन और आसमान वाला अंतर है। तो लेकिन ये मृग और मृगी वो समझते ये साधारण मनुष्य नहीं है, उनका उनको भय नहीं है, उल्टे आके अपना वात्सल्य प्रकट कर रही है। शुक पिक भ्रंग प्रभु रे देखी पंचम गाय, सिखी गण नृत्य करी प्रभु आगे जाय। तो और अभी पंछी आ गए, गाय आई थी, हिरण आए, अब पंछी। कौन कौन से पंछी है? या शुक आ गए, शुक मतलब तोते आ गए, पीक मतलब मयूर आ गए, मोर आए, भ्रंग मतलब भ्रमर आए, और ये सब आके गा रहे हैं। पंचम गाय, सारे ग म प, प जो होता है ना, सारे ग म प, इसको ऊंचा स्वर माना है, ऊंचा। तो पंचम गाय मतलब जो सारे ग म प ध नि सा में जो पांचवा है, हाई ऊंची नोट, हाई पिच है, सब पंछी का ऐसा ही होता है, तो सब गा रहे पंचम गाय। और सीखी गण नृत्य करी प्रभु आगे जाए, तो बाकी सारे पंछी तो आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे महाप्रभु आगे जा रहे हैं तो ऊपर कौन है? कई सारे पंछी है और वो गान कर रहे हैं, उनकी कलरव चल रही है। लेकिन जमीन में उनके समक्ष मयूर है। मयूर किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए। तो कई सारे मयूर प्रभु के आगे हैं और उन्हें अपना सारा पीछे का जो पूंछ है सब पूरा खोल दिया है। वैसे कभी देखे हो आप ऐसे मयूर को? मुर्गी जैसा तो पूंछ देखते ही आप लोग, कॉक, एक कॉक होता है, दूसरा एक पीकॉक होता है। तो तो कॉक का, कोंबड़े का कोंबड़ा, तो मुर्गा ऐसा मयूर का पूंछ वैसे प्रायः वैसे ही दिखाई देता है, लेकिन जब वर्षा के वर्षाकालीन काले बादल जब छा जाते हैं, उमड़ आते हैं, तब वो मयूर नृत्य करने लगते हैं। और भी कोई हर्ष का विषय उनके लिए है। व्यक्ति नाचता कब है? जब आनंद हर्ष है तो नाचता है। दुखी अवस्था में दिवाला निकल गया तो क्या करेगा? नाचेगा? किसी को मुंह भी नहीं दिखाएगा। जो खुशियां प्रदर्शित करनी है, फिर व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता, नाचने लगता। जैसे आप थोड़ा आनंद ले रहे थे कीर्तन में, तो पहले बैठे थे तो फिर आनंद में कुछ वर्धन हुआ तो फिर बैठना मुश्किल था, आपको उठना पड़ा। उस आनंद ने आपको उठाया और आप नृत्य करने लगे। आप भी वैसे ही नृत्य कर रहे थे जैसे मयूर वृंदावन के, डांसिंग लाइक अ पीकॉक। और सुंदर की प्रसन्नता के लिए, राधा कुंज बिहारी के प्रसन्नता के लिए, और जीवन का वैसे यही लक्ष्य है। प्रभुपाद लिखते हैं एक स्थान पर, टू ज्वाइन, कहते ज्वाइन, टू ज्वाइन द डांसिंग पार्टी ऑफ राधा एंड कृष्ण। राधा कृष्ण की जो डांसिंग पार्टी है अपने धाम में, उसमें सम्मिलित होना, ये जीवन का लक्ष्य। तो यहां नाचते 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 जैसे शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे हम, ये अभ्यास है, ये साधना है, इसी का फल है, हम प्रभु के साथ नाचेंगे। लेकिन हम यही पर यहां भी नहीं नाचते तो फिर सीधे वहां, हम वहां जाके नाचेंगे, यहां नहीं नाचेंगे, ऐसा नहीं होता है। या ट्रेनिंग सारा रिहर्सल सब होने के बाद एक बूढ़ी माता जी भी नाच रही थी, हा? हास रही है अभी बड़ी खुश। तो वैसे नाचता तो भक्त जब नाचते हैं तो उनका शरीर नहीं नाचता है। लोग जब होटलों में नाचते उनके शरीर नाचते हैं, भक्त जब नाचते तो उनकी आत्मा नाचती है। और शरीर तो केवल साथ देता है, शरीर तो मजबूरी से, और क्या करें। जब आत्मा नाचना चाहता है तो शरीर भी फिर हिलता है। और फिल्म संगीत के साथ जब नाचते तो पहले तो आत्मा की हत्या कर दी उन्होंने, किलर ऑफ द सोल। फिल्म संगीत आत्मा को, आत्मा का विनाश करके ही फिर नाचो। एक काम से वशीभूत नृत्य होता है, एक प्रेम से वशीभूत नृत्य होता है, और दो ही तो बातें होती है। फिर नृत्य भी है या कोई कार्य भी है, ये संसार के सांसारिक जो कृत्य है, नृत्य है, ये काम से वशीभूत होके लोग करते हैं, बद्ध जीवात्मा। तो प्रभु के भक्त या साधक भी प्रयास करते हैं प्रेम को जागृत करके, प्रेम से वशीभूत होके वो नृत्य और कृत्य करना चाहते हैं। तो यह मयूर, सीखी गण नृत्य करी प्रभुर आगे जा। ये नृत्य आगे क्यों हो रहा है? बाकी सारे पंछी तो ऊपर है, गाय पीछे आ रही है, और नृत्य आगे हो रहा है। नृत्य आगे क्यों? नृत्य को क्या करना होता है? देखना होता है। इन्हें कोई डांसिंग पार्टी है और आप लोग आंखें बंद करके बैठे हो। आंख बंद करके तो कथा सुन सकते हो कि भजन भी सुन सकते हो, लेकिन जब नृत्य डांसिंग है तो क्या करना होगा? आंख तो खोलनी होगी ना। सामने है तो फिर तो बाकी पंछी पशु गाय भी पीछे है, कुछ ऊपर है, बगल में है, लेकिन मयूर तो सामने है ताकि प्रभु देख सकेंगे। ऑफ कोर्स महाप्रभु के लिए तो ये जरूरी नहीं है कोई सामने व्यक्ति है या तभी प्रभु देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु पीठ से भी देख सकते हैं, प्रभु के बाल भी देख सकते हैं। सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पांती, सकल इंद्रिय वृत्ति कहा है, भगवान की इंद्रिया और हमारी इंद्रिया में भेद है। हमारी एक इंद्रिया केवल एक ही कार्य कर सकती है, आंख देख ही सकती है, कान श्रवण का ही कार्य, सूंघने का कार्य, नाक जिह्वा का कार्य अलग, लेकिन भगवान का एक इंद्रिय और सारे इंद्रियों का कार्य कर सकता है, ये तत्व है। ये तत्व सीखना है। तो और इसको सीखना मतलब भगवान को समझना है। आई नो गॉड मतलब ये सब नॉलेज के अंतर्गत ये हुआ, ऐसे भगवान है। नहीं तो फिर हम लोग भगवान को आत्मवत मन्यते जगत, मेरे जैसे या थोड़े बड़े होंगे, थोड़े थोड़े अधिक बलवान होंगे, थोड़े अधिक सुंदर होंगे, ये सब डॉक्टर फ्रॉग वाली बात होगी। फिर हम मेढक, हाँ तुम्हारा पैसिफिक इतना बड़ा, मेरे कुएं से बड़ा है मेरा कुआ, कुएं में एक मेढक है और दूसरा एक विजिटर आ गया, कहां से आ गया, पैसिफिक महासागर से आ गया। ए कहां से आए, महासागर से, कितना बड़ा है तुम्हारा महासागर, मेरे कुएं से ही बड़ा है क्या, हाँ बहुत बड़ा, दुगुना है, नहीं दुगुना क्या और बड़ा है, चौगुना, दस गुना तो होगा ही, सौ से तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेढक सोच सोच के क्या कितना सोच सकता है, उसका अनुभव तो लिमिटेड, कुआ लिमिटेड है, कुआ है 10 फीट मैक्सिमम 50 फीट लंबा चौड़ा ऐसा, तो कहां कुआ और कहां सागर महासागर। तो मेढक तो सोचता है अपनी ढंग से चाल से सोचता है, तो मनुष्य भी भगवान को जब जानने का प्रयास करता है तो सोचो बलवान बलवान है, इसे सुना है हमने, तो थोड़े ज्यादा बलवान होंगे या सुंदर है तो इतने अधिक सुंदर होंगे, इसीलिए वैसे भी कहा अचिंत्य अचिंत्य गुण स्वरूपम। अपने चिंता से अपने बुद्धि से हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रयास कुछ व्यवस्था है भगवान को समझने की, तो जितना मनुष्य समझ सकता है, तो शास्त्रों के साधु शास्त्राचार्यों के मदद से जन्म कर्म च मई दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, भगवान गीता में कहें भगवान को व्यक्ति जानते हैं, विथ विद विद्वान ये धातु से, व्यक्ति मतलब जानते हैं या जानना चाहिए, तत्वतः भगवान को तत्वतः जानना चाहिए, भगवान के जन्म और लीला को, और ऐसा जानने वाला फिर त्यक्त्वा देहम अधिकारी बनता, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, ये तत्वतः जानने का जानने की जो बात है। तो वाह सिखी गण नृत्य करी, तो सारे मयूर आगे नृत्य कर रहे, प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रभु देखी वृंदावनेर वृक्ष लता गणे अंकुर पुलक मधु अश्रु बरिशने, अब पंछी देखे पशु भी देखे, गाय हिरण और सारे पशु भी पंछी भी कुछ नृत्य कर रहे, कुछ आकाश में उड़ के कलरव कर रहे हैं। अब प्रभु का ध्यान वृंदावन की जो वृक्ष है लता उनकी ओर जा रहा है। तो महाप्रभु देखते हैं कि वहां के पेड़ में भी कंपन है, कांप रहे हैं। कृष्ण प्रेम के कारण वहां के पेड़ भी कांप रहे हैं, रोमांचित है। और अश्रु धाराएं बह रही हैं। तो वृक्ष से कभी मधु हनी गिरता है तो चैतन्य महाप्रभा अश्रु बहा रहे, अश्रु धारा तो देखो इन वृक्षों की। तभी गौर सुंदर को देख के, श्याम सुंदर को देख के पेड़ों में कंपन और मधु अश्रु बरिसने, फूल फल भरी डाल पड़े प्रभु पाए, बंधु देखी बंधु जेन भेंट लैया जाए। तो पेड़ की शाखाओं में कितने सारे फल है, कई सारे फल से आच्छादित, फलों से लदे हुए पेड़ है, वृक्ष है। इतने सारे फल है कि वो शाखाएं ऐसी झुकी हुई है। जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं उनकी तुलना की जाती है। तो ज्ञानी झुकते हैं, या जो विद्वान है वो झुकते हैं, नम्र होते हैं। जैसे पेड़, पेड़ में जो फल है उनकी शाखाएं झुकती है नीचे, या मानो आमंत्रित कर, आ आओ आओ ले लो फल, ले लो फल, जहां भी हो ऊपर चढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, ले लो फल। उनमें नम्रता है और दान की वृत्ति है। तो जो विद्वान होते हैं, तो विद्या ददाति विनयम कहा है। विद्या क्या करती है? विनय देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता। विद्या से विनय और विनय से पात्रता, पात्र होना, अधिकार। लेकिन जिन वृक्षों में पेड़ नहीं है वो क्या, ऐसे खड़े हो जाते, वो झुकते नहीं है, वो खड़े हो जाते। तो विद्या का सही प्रभाव लाभ नहीं होने से फिर अहम अहम कुछ उल्टा विपरीत परिणाम प्रायः देखा जाता है विद्वानों में, अहंकार। ये ज्ञान का भाव, या ज्ञान है विज्ञान नहीं है, ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो भाव ये है कि इन वृक्षों ने देखा कि हमारे हमारे परम मित्र आ रहे हैं, और बहुत समय के उपरांत अब मिलन हो रहा है, तो बंधु को मिलना है तो कुछ भेंट तो देनी चाहिए। तो ये पेड़ झुक झुक के क्या कर रहे हैं, मानो फल दे रहे हैं, प्रभु फल लीजिए। हर वृक्ष आमंत्रित कर रहा है, ध्यान आकर्षित कर रहा है, प्रभु हाँ हाँ मेरा भी फल, अमरूद ले लो, अकेला चिकू भी है। सब पंच ये वृक्ष बुला रहे हैं, मानो फल ले लो, फल लीजिए, मेरा भी लीजिए ना। बंधु देखी बंधु जेना भेंट लैया जाए, प्रभु देखी वृंदावनेर स्थावर जंगम, आनंदित बंधु जेने देखे बंधुगण। तो महाप्रभु अनुभव कर रहे कि वहां के सारे स्थावर और जंगम, वैसे प्रॉपर्टी भी संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, स्थावर जैसे घर है उसको यहां से बंबई नहीं ले जा सकते, कहीं भी नहीं ले जा सकते, स्थावर स्थित एक स्थान पर, और फिर जंगम कार है और कोई, तो वृंदावन में भी जो स्थावर है स्थित है, जैसा पेड़ भी है पर्वत भी है और ये स्थावर है, जंगम है तो पशु पंछी इत्यादि, ये जंगम है तो वहां के सारे स्थावर जंगम व्यक्ति आनंदित आनंदित, और बंधु जेन देखे बंधु गौना, जैसे एक बंधु को दूसरा बंधु मित्र देखता है कितना आनंद हर्ष का अनुभव करता है, वैसे अनुभव हो रहा है सभी को। तास बार प्रीति देखी प्रभु भावा वेशे, सबा सने क्रीड़ा करे हैया तार वशे, और उनके वश में होके जैसे गायों के वश में प्रभु, मोर के वश में प्रभु, उन पंछियों के इन वृक्षों के सभी के वश में होके हाँ नाचाओ, वे जैसे नचाते हैं वैसे नाच रहे हैं प्रेम वश। अपना यह ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर रहे, वो नचा रहे। तार सबार देखी प्रभु भावावेशे, प्रभु में भाववेश जागृत हो रहा है, हुआ है, और सबा कारे क्रीड़ा करे, सबके साथ क्रीड़ा आदान प्रदान। प्रति वृक्ष लता प्रभु करे न आलिंगन, पुष्पादि ध्याने करे वृक्षे समर्पण। तो अब प्रभु वृक्षों के साथ कैसे आदान प्रदान, वृक्ष कह रहे कि फल ले लो, फल वृक्ष कांप रहे हैं, मधु गिर रहा है, तो महाप्रभु वृक्ष को आलिंगन दे रहे हैं। एक आलिंगन दिया तो बगल वाला कहता तो मुझे भी, मैं तो अगर चलायमान कोई जंगम होता तो मैं आपके पास आ सकता था, लेकिन मजबूरी है, मैं हिल भी नहीं सकता, प्रभु आओ ना, आप तो वहां से तो तीन कदम ही तो मैं दूर हूं, मेरे पास भी आओ। तो प्रभु उस वृक्ष की ओर जाते, फिर बगल वाला कहता है मैं तो अभी 1.5 फीट ही तो दूर हूं उसको बैलिंग, मैं तो दूसरा कहता है मैं तो अभी 1 ही फीट दूर हूं, और मैं तो 6 इंच ही दूर हूं, आओ। तो प्रभु एक पेड़ दूसरा पेड़, या हो सकता है जितने पेड़ है उतने प्रभु बन गए, और सबको एक ही साथ आलिंगन, नहीं तो एक वर्ष तो आलिंगन देते देते ही 1, 2, 3 एक के बाद एक, फिर यात्रा कब करेंगे, तीर्थ यात्रा में आए हैं कि आलिंगन देने आए। तो उन्होंने फटाफट आलिंगन भी दिया महाप्रभु भगवान, और पुष्पादि ध्याने करे कृष्ण समर्पण। तो वृक्षों के पास जब आलिंगन भी दिया तो पुष्प पेड़ और भी प्रसन्न है, फल दे रहे हैं, जिनके पास पुष्प है वो पुष्प की वृष्टि हो रही है, शाखाएं अपने आप हिल रही है, जिस पेड़ के नीचे से प्रभु अब जा रहे हैं उस पेड़ की शाखा ही हिलना प्रारंभ करती है, वो सारे फूल की वर्षा, वहां से आगे गए दूसरे पेड़ के नीचे वहां फूल की वर्षा होती है, अलग अलग किस्म के अलग अलग रंग के अलग अलग गंध के पुष्पों की वर्षा हो रही, महाप्रभु जैसे भी आगे बढ़ते हैं। पुष्पादि ध्याने करें कृष्ण समर्पण, आश्रु कंप पुलक प्रेमे शरीर अस्थिर, बल कृष्ण बल कृष्ण बल उच्च स्वरे। तो सभी के महाप्रभु के भी और वृक्षों के सभी के मानो पूरा ब्रज ही कांप रहा है, जैसे धरणी कम पुणे तो तब कांपता जब धरणी कम होता है, जावा सुमात्रा पूरा समुद्र में कंपन। लेकिन यहां यहां जो कंपन हो रहा है ये प्रेम के कारण कंपन हो रहा, सभी कंपित है प्रेम वश। तो महाप्रभु अब सभी से निवेदन कर रहे हैं, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, बोले उच्च स्वरे, कृष्ण बोलो। तो फिर वो सभी जब कृष्ण कहते हैं तो सारा ब्रज ही क्या कर रहा है, कृष्ण बोल रहा है। स्थावर जंगम मिली करी कृष्ण ध्वनि प्रभुर गंभीर स्वरे जेन प्रतिध्वनि। तो महाप्रभु के ध्वनि में गंभीर्य है, मेघ गंभीर या वाचा, भगवान की वाचा बड़ी गंभीर है, डीप। आप लोग भी जब ये धारावाही क्या कहते हैं सीरियल देखते हैं, उसमें भी जब कृष्ण का आवाज उसमें थोड़ा गहराई डालते हैं ना, और मनुष्य जैसे आवाज नहीं होता है, और मनुष्य बोलते तो हम आप जैसे बोलते हैं, लेकिन कृष्ण का आवाज जब कृष्ण बोलते हैं तो उसमें गर्जना है, गहराई है। तो वही वो प्रकार मृगेर गलाधरी प्रभु करे न रोदन, मृगेर पुलक अंगे अश्रु नयने। तो एक हिरण देखा, ऐसे ही अंत में कहेंगे वृंदावन दास, नॉट वृंदावन, जगन्नाथ, जगन्नाथ कृष्णदास कविराज, उन्होंने तो ऐसे ही कुछ बूंद छिड़का रहे हमारी ओर उस वृंदावन का, जो प्रसंग है महाप्रभु की वृंदावन भेंट ब्रज यात्रा, वहां के सारे अनुभव वे कहते हैं मैं नहीं लिख सकता, ये अनंत शेष उनको संभाल सकते हैं, अनंत शेष भगवान। हर पंछी की अपनी सीमा है, कोई पंछी 10 फीट ऊंचाई पर उड़ता है तो कोई 20 फीट, तो कोई 50, तो कुछ ऐसे पंछी है कई मील ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। तो कृष्णदास कविराज कहता ये ठीक है, मेरी जितनी क्षमता है मैं जितने ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ उड़ के उड़ा हूँ मैं, इससे ज़्यादा तो मुझसे नहीं होता है, तो इतना ही मैं लिख सकता हूं। तो कुछ सैंपल नमूना यहां है। तो एक एक मृग, एक हिरण, तो महाप्रभु उसको पकड़े हैं, उसका गला पकड़े हैं, स्नेह से गला पकड़े हैं और रोदन कर रहे हैं। स्पर्श हाथ से कर रहे हैं, एक हाथ से गला भी पकड़े हैं और महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं। तो उस हिरण भी, हिरण का अंग भी कांप रहा है महाप्रभु के स्पर्श मात्र से, और हिरण के आंखों से भी आंसू प्रचुर मात्रा में बह रहे हैं। वृक्ष डाले शुक सारी दिल दर्शन, तहा देखी प्रभुर किचु सुनित हैल मन। तो इतने में महाप्रभु ने एक वृक्ष देखा आगे, विशाल वृक्ष, और उसकी एक शाखा पर दो पंछी बैठे हैं, सुख है एक सारी है दूसरी, सुख सारी तोता मैना बैठे हैं और देखते कुछ कुछ आपस में कुछ संवाद चल रहा है, कुछ बोल रहे। तोता बोलना प्रारंभ किया था, बंद हो गया। सुना था आपने? मैंने सुना। अब तो महाप्रभु के मन में विचार आया, उनका जो भी संभाषण का विषय है क्या मैं समझ सकता हूं, क्या टॉपिक चल रहा है उनका, किस विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं आपस में, ऐसी इच्छा जगी महाप्रभु के मन में। किचु सुनीते हईल मन, किचु कुछ सुनने का विचार हुआ, इच्छा हुई। सुख सारी का प्रभु रहते उड़ी पड़े, प्रभु के सुनाइया कृष्ण रघुण श्लोक पड़े। तो हुआ क्या, आप आधा तो समझे होंगे। जब महाप्रभु ने जब इच्छा की, क्या क्या मैं सुन सकता हूं उनका संभाषण उस सुख सारी का, तो उस सुख सारी वहां से उड़े और सीधे महाप्रभु की ओर उड़ते हुए आए, तो महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए। एक पंछी दो ही तो थे, एक दाहिने हाथ पर बैठा और दूसरा बाएं हाथ पर। तो जो भी संभाषण कर रहे थे वो आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ तो बड़े कुछ श्लोक लंबे भी आए हैं गोविंद लीलामृत से। तो ये पंछी कृष्ण कथा राधा कथा कर रहे थे, यानी कि वहां ग्राम कथा कर रहे थे और फिर झट से टॉपिक बदली किया। जब कोई हम लोग भी टॉपिक चेंज करते हैं झट से कभी कभी। शुक सुनि बोले तबे कृष्णेर वर्णन, सारिका बड़े तबे राधिका वर्णन। तो जो सुख था वो कृष्ण का वर्णन कर रहा था और जो सारिका थी राधिका का वर्णन कर रही थी, और आपस में कुछ शास्त्रार्थ शब्द कंपटीशन चल रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरी राधा श्रेष्ठ है, शट अप, कृष्णा कह रहा, कृष्ण श्रेष्ठ है, कृष्ण। आपस में उनकी लड़ाई चल रही, कौन श्रेष्ठ है। तो ये उनके संभाषण का, इसको संभाषण कहेंगे। कैसा भाषण, संभाषण। कैसा कीर्तन, संकीर्तन। कैसा गीत, संगीत, सम्यक, होलसम, संभाषण, उचित भाषण। पुनः सुख कहे कृष्ण मदन मोहन, तबे यार श्लोक शुक करीला पठन। मैं कहता हूं ना, हे कृष्ण तो मदन मोहन है, इतना सारा उनका सौंदर्य, वो मदनों को भी, मदन कामदेव, एक देवता है कामदेव, काम के देवता, बड़े सुंदर होते हैं, पुष्प बाण लेके चलते रहते हैं और काम वासना को जगाते रहते हैं अपने सौंदर्य और उस पुष्पबान की मदद से सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है कामदेव, उनको मदन भी कहते हैं। तो ये तोता कहता है, नहीं नहीं ए सारिका, मेरा कृष्ण मदन मोहन है, मदन को मोहित करता है, और केवल एक एक मदन को नहीं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, कोटि कोटि कंदर्पों को मदनों को आकर्षित करता है, मोहित करता है मेरा मदन मोहन श्री कृष्ण। अरे अरे करता होगा तुम्हारा मोहन, मदनों को मोहित करता होगा, लेकिन तुमको इस बात का भी पता है मेरी राधिका तो मदन मोहन मोहिनी है। तुम्हारा मोहन तो मदनों को मोहित करता है, लेकिन ऐसे मदन मोहन को मोहित तो मेरी राधिका ही करती है, समझे? सो जाओ। शुक शारी उड़ी पुनः गेल वृक्ष डाले, माधुर्येर नृत्य प्रभु देखे कुतूहले, मयूरेर। तो ये और भी आप विस्तार से कभी पढ़िएगा उसको, थोड़ा और भी सजाए हैं, समालंकृत किए हैं इस संभाषण को, मैंने सब आपको नहीं सुनाया, उतना विस्तृत नहीं है लेकिन है कुछ। तो ये बातें सुनाई सुख सारिका ने, और फिर पुनः उड़ के वो शाखा पर जाके बैठे, और फिर और आगे की कथा बातें करते ही रहे। यहाँ तो एक शुक और सारिका की बात चल रही, वृंदावन में जितने शुक जितने सारिकाएं हैं उनका चर्चा का यही विषय है। दो प्रकार की कथाएं होती संसार में, एक कृष्ण कथा और दूसरी ग्राम कथा। ग्राम से गप्पा गोष्ठी, गाउठी कथा, गाउठी राजकारण, राजनेता और अभिनेता की चर्चा खूब होती इस देश में, राजनेता पॉलिटिशियंस, अभिनेता हीरोज, और स्पोर्ट्स भी है, खेल कूद का भी अपना जगत है, ये सारे टॉपिक्स है, ये सारी क्या कहलाएंगे ग्राम कथा। फिर इकोनॉमिक्स भी ग्राम कथा, ये सब ग्राम कथा चलती रहती। तो वृंदावन के वृंदावनेर तरुर लता प्रेमे कोय हरी कथा, हमने वृंदावन की तरुर लता भी हरी कथा गाते हैं। प्रभुर मूर्छित, तो प्रभु ने अब देखा मयूरेर कंठ देखी प्रभुर, कृष्ण स्मृति हैला प्रेमावेशे महाप्रभु भूमिते पड़िला। तो मयूर जो सामने नृत्य कर रहा था, तो महाप्रभु ने उस मयूर के, नृत्य करने वाले मयूर के कंठ की ओर ध्यान गया प्रभु का। तो कंठ में उसे प्रभुर कृष्ण स्मृति हेला, प्रभु को कृष्ण की स्मृति हुई। कंठ में क्या है स्मृति दिलाने वाली बात, जो रंग है विशेष, और भी होता है मयूर के अंग में कई बातें जो कृष्ण की याद दिला सकती है, उनके रंग, मयूर पंख भी है, मयूर पंख तो प्रभु अपने बालों में धारण करते हैं, मुकुट में धारण करते हैं, मयूर पिच मोर पंख उसको देखे, फिर गले में देखे तो प्रभु जैसा ही रंग कांति, उसको देखते ही प्रेमा वेशे महाप्रभु भूमि ते पड़िला, प्रेम के आवेश में वो भूमि पर गिरे, जमीन पर गिरे। प्रभु रे मूर्छित देखी सेई तो ब्राह्मण भट्टाचार्य संगे करे प्रभुर संतर्पण। तो दो थे, एक तो भट्टाचार्य नाम के प्रभु के सहायक जो जगन्नाथपुरी से साथ में आए थे, और एक स्थानिक ब्राह्मण। तो दो थे प्रभु की सेवा में उस परिक्रमा के समय। तो महाप्रभु को स्थिति में देखा तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए स्थिति में, कुछ तो प्रयास तो कर रहे हैं। आस्ते व्यस्ते महाप्रभु लैया बहिर्वास जलसेक करे अंगे वस्त्रेर वातास। तो महाप्रभु का बहिर्वास लिए, पास में गए तालाब वो गीला किए और महाप्रभु के अंग पर कुछ छिड़काव कर रहे जल का, और हवा भी चला रहे हैं, ढुला रहे। प्रभुर करने कृष्ण नाम कहे उच्च करी चेतन आइया प्रभु जान गड़ागड़ी। पहले तो एक ही स्थान पर स्थिर अचेतन प्राय होके ऐसे पड़े थे, लेकिन अब जब ये जल शेक ये भी हुआ हवा, और जब उन्होंने प्रभु नाम के उच्चारण किया कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 पाहिमा, कृष्ण 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 रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, कृष्ण राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, उच्च स्वरे उच्च स्वर से पुकारने लगे। हो सकता है एक भट्टाचार्य एक कान में और दूसरे द्विजवर दूसरे कान में कह रहे, जोर जोर से प्रभु का नाम कहने मात्र से कुछ चेतना तो आई, लेकिन चेतना जैसे भी आई तो गड़ागड़ी लोटपोट शुरू हुआ, लोटने लगे, ऐसे यहां जाते वहां जाते वहां जाते हैं लोटांगन। कंटक दुर्गम वने अंगो क्षत हैला भट्टाचार्य कोले करी प्रभुर सुस्थ कैला। तो वो स्थान तो वह कई सारे कंटक भी थे, काटे थे, पत्थर थे, ऐसी भूमि, कोई बेड ऑफ रोजेस तो नहीं था वहां, कुछ फूलों की पंखुड़ी ऐसी बिछाई नहीं थी, मुलायम उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। तो वहां जब लोट पोट होने से महाप्रभु के शरीर में कुछ क्षति, कुछ जख्म ऐसा दिखाई देने लगा, तो महाप्रभु जैसे भी लौट के इधर जा रहे हैं, लौटते इधर जा रहे, तो दोनों प्रभु दौड़ते हैं, उनके पकड़ में नहीं आ रहे, इधर जाते हैं तेजी से लाइक अ लाइटनिंग, तो यहां दौड़ते वहां दौड़ते वहां दौड़ते, तो बड़े प्रयास के उपरांत भट्टाचार्य कोले करी प्रभु रसुस्थ कैला। भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को पकड़े और अपने गोद में लिटाए और बड़े पूरी ताकत के साथ पकड़े रहे। कृष्णा वेशे प्रभुर प्रेमे गर गर मन बोल बोल करी उठी करे न नर्तन। कंठ से कुछ गर गर की आवाज पहले प्रारंभ हुई और धीरे धीरे प्रभु कहने लगे बोल 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 उठी करेन नर्तन। और फिर तो उठ के खड़े हुए और करे न नर्तन, खूब नर्तन और कीर्तन भी किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभुर प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मित प्रभुर रक्षा लागी विप्र हईला चिंतित। तो कीर्तन देख के भी ब्राह्मण विस्मित तो हुए हैं, ऐसा अद्भुत कीर्तन और नृत्य, लेकिन साथ ही साथ प्रभु रक्षा लागी विप्र हईला चिंतित, लेकिन इन दोनों को चिंता भी तो इस बात की अब थी कि पुनः अगर भावावेश में आके प्रभु मूर्छित होते हैं और ये लोट पोट अगर प्रारंभ होता है तो पुनः समस्या। ये तो कभी भी हो सकती है ऐसी स्थिति। नीला चले अब जगन कृष्णदास कविराज अब इस अध्याय का समापन और कथा भी चैतन्य लीला को भी हम लोग का समापन करेंगे। तो यहाँ कुछ कमेंट्स है जगन कृष्णदास कविराज। नीला चले चिला ऐछे प्रेमा वेशमान वृंदावन जाइते पथे हईलो शतगुण। तो नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी में भी भावावेश तो होता ही था, भाव का आवेश, किंतु जब वे जगन्नाथपुरी में ही रहते थे तो वहां भी भाव का आवेश, किंतु जब वे वृंदावन के पथ पर अब वृंदावन की ओर जब जा रहे थे, नीलाचल से वृंदावन की यात्रा जब कर रहे थे, तो प्रभु का जो भाव का आवेश है वो 100 गुना बढ़ गया, 100 times जो भी भावावेश की मात्रा वो बढ़ के 100 गुना हो गई। सहस्र गुण प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने, लक्ष गुण प्रेम बाड़े भ्रमे न जबे मने। तो प्रभु जब मथुरा पहुंचे, मथुरा के दर्शन से वो भाववेश भावावेश 100 गुण अधिक हुआ, जो नॉर्मली जगन्नाथपुरी में नीलाचल में होता था उसके 1000 गुना अधिक मथुरा के दर्शन से। और पुनः जब ब्रज की यात्रा प्रारंभ हुई, ब्रज मंडल की यात्रा कर रहे, एक वन से दूसरे वन जा रहे हैं, तो भाव का आवेश 1,00,000 गुना अधिक हुआ, बढ़ गया। अन्य देश प्रेम उछले वृंदावन नामे, साक्षात भ्रमये ये भी सही वृंदावने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद या लिखते हैं, वैसे हम भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही प्रभुपाद नहीं कहते हैं, प्रभुपाद एक पदवी है, तो कई आचार्यों के नाम के साथ ही प्रभुपाद, रूप गोस्वामी प्रभुपाद, कृष्णदास गोस्वामी प्रभुपाद, ये प्रभुपाद प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ये नहीं कि केवल भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, या जब भी प्रभुपाद नाम सुनते हो तो वो एक ही नाम का संकेत नहीं हो रहा है, कईयों के नाम के साथ भी जोड़ा जाता है ये प्रभुपाद नाम, प्रभुपाद या विष्णुपाद ऐसे नाम जोड़े जाते हैं। तो यहाँ कविराज गोस्वामी पाद गोस्वामी पाद भी है, प्रभु पाद है, गोस्वामी पाद है। तो कहते कि महाप्रभु जहां भी रहते थे, फिर वो नीलाचल है या और कहीं वृंदावन और मथुरा से बाहर, तो उनमें भाव का आवेश होता ही था। कैसे, जब जब ये वृंदावन का नाम सुनते हैं, वृंदावन के नाम के श्रवण मात्र से ये भाव जागृत होता था, प्रेमावेश, भावावेश। लेकिन अब तो वे कहाँ है, अब तो वृंदावन में ही है। पहले दूर देश में कहीं है, वृंदावन से दूर है, केवल वृंदावन की कथा, वृंदावन का नाम ही सुने तो जो भाव का आवेश होता, अब तो वे वृंदावन में ही है। प्रेमे गर गर मन रात्रि दिवसे स्नान भिक्षादि निर्वाह करे न अभ्यासे। तो इस वृंदावन में और इस वृंदावन की यात्रा के दरम्यान तो प्रभु का मन सब समय भावावेश में अहर्निश, और स्नान या भिक्षा, भिक्षाम देही, प्रभु जो भी अयाचक वृत्ति जो भी कोई देता है या भिक्षा के लिए कोई व्यवस्था करता है, तो बीच में प्रसाद थोड़ा लेते हैं, लिया कि नहीं लिया पता भी नहीं चलता कई बार। हाँ प्रसाद लो ना, क्या प्रसाद लो, अभी तो लिया मैंने, कहते या कभी अभी प्रसाद ले लिया, प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ, अभी तो प्रसाद लिया, हाँ प्रसाद मांग रहे। तो उनको कुछ सुध बुध, कब खाया पिया, नहीं धोया, स्नान ये कुछ थोड़ा थोड़ा रूटीन से होता था, लेकिन ज्यादा कोई ध्यान नहीं, उसमें ध्यान ही नहीं। सारी योजना, सारा बाथरूम हो तो ऐसा हो, उसमें भी टेलीविजन हो, उसमें भी मोबाइल फोन की व्यवस्था हो। पहले तो बताया करते थे, हाँ अब बाथरूम में है, बाथरूम में, बाद में फोन करना। अब तो फोन बाथरूम में ही पहुंच जाता है, बाथरूम से भी सारा बिजनेस सब चलता रहता, बाथरूम से, बाथरूम ही हेडक्वार्टर हो गया। और बाथरूम को इतना बढ़िया बनाते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं बाथरूम कैसा हो, स्पेशलिस्ट होते बाथरूम का इंटीरियर डिजाइन, बाथरूम से जुड़े हुए कई प्रकार के साबुन, सोप, सुगंधित तेल, और वहाँ आईना किस प्रकार का हो, और किस प्रकार की लाइट्स हो, दिवसा शरीर साजे, कोई चिंता नहीं, शरीर को सजाना है, साज श्रृंगार जो होता था, थोड़ा थोड़ा स्नान कर लिए, थोड़ा कभी भोजन कर लिए, बाकी समय समय तो भावावेश में ही। यही मत प्रेम जावत भ्रमीलो बारो बारवान, एकत्र लिखिलु सर्वत्र नाय चाय वर्णन। तो यही मत, ये जो भी अभी कहा, तो कृष्णदास कविराज कह रहे थे इस प्रकार उन्होंने 12 वनों की यात्रा की। वैसे यात्रा पूरी नहीं हुई है, आगे के अध्याय में भी कुछ ब्रज यात्रा का, राधा कुंड की भेंट और अक्रूर घाट पर उनका वास निवास, वहां के और भावावेश का वर्णन, वो स्थान इमली तला नाम का स्थान, अब वो इमली अब वृक्ष नहीं रहा, नया उगाया है, वहां बैठे बैठे महाप्रभु जमुना के तट पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के प्रभु जप करते थे। प्रभु के स्मरण मात्र से, कृष्ण के स्मरण से उनका गौर अंग श्याम वर्ण बनता था। कृष्ण के स्मरण से इतने कृष्ण कॉन्शियस होते, उनका वो सुनहरा शरीर का रंग परिवर्तित होके वो श्याम वर्ण के बनते। प्रभु कालिया घाट के पास भी प्रभु ने कुछ भजन किया, तो ऐसा भी वर्णन अगले अध्याय में आया है। प्रभु की वृंदावन की यात्रा, वृंदावन निवास, तो बारह वनों के संबंध में कह रहे, हाँ हाँ, इस प्रकार भ्रमण किए, यात्रा किए, एकत्र लिखिलो सर्वत्र ना जाय वर्णन। तो ये सब लिखना तो लिखा नहीं जाता सारा, जो जो घटनाएं घटी। वृंदावने हैला प्रभुर जते को प्रेमेर विकार, कोटि ग्रंथे अनंत लिखेन तहार विस्तार। और विकार एक एक दृश्य का, एक तो बाहर से जो आंखों से जो दिखाई देता वो एक बात है, फिर अंदर जो मन का, जो हृदय का जो विकार भाव, और कोटि ग्रंथ है, इसको अगर लिखा जाए तो कितने ग्रंथ होंगे, कोटि कोटि ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिख सकता। किसको लिखना, किसको लेखक बनना होगा, अनंत शेष को लेखक बनना होगा, तो वो लिखेंगे तो कोटि कोटि ग्रंथ हो ही जाएंगे। तब लिखी बारे नारे तार एक कौन उद्देश्य करिते करी दिग्दर्शन। मैं तो उस पूरे सिंधु का, ये सारा सागर लीला का सागर, ये सारा सिंधु में से केवल एक बिंदु उठा के आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, या मैं केवल संकेत ही कर रहा हूं, केवल संकेत ही, दिग्दर्शन। हाँ, यहां पर ऐसा ऐसा है, तो देख ऐसा है, अधिक इतना ही कह सकता हूं मैं। जगत भासिल चैतन्य लीलार पाथारे, जार जत शक्ति तत पाथारे शांतारे। तो चैतन्य लीलार पाथारे, चैतन्य लीला का सागर या बाढ़, ये जो खलबली मच जाती है और बाढ़ आ जाती है, लहरें तरंगे उछलती है, तो जार जत शक्ति तार पाथारे सातारे, तो जिसकी जितनी शक्ति है उसमें वो तैर सकता है, कोई डूब जाएगा, कोई तैर जाएगा, कोई उन तरंगों से बाहर फेंक दिया जाएगा, तो हर एक की शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति वो जो लीला का सागर है उससे व्यवहार करेगा। तो मैंने, मुझे जितना संभव था मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सेवा की है, इतना लिखा है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sanatan, Rupa and Raghunath, not Sanatan, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. So Rupa or Raghunath, Pade Jara Ash, उनके चरणों की आशा, पदधूली की आकांक्षा लेके बैठा हुआ ये कृष्णदास लिख रहा है चैतन्य चरितामृत कथा अमृत. हरि बोल.